और वाहन और श्वेत केतु का संवाद और संग्रह, उसमें कहा गया है कि पंचाल देश के राजा परवाहन ने श्वेत केतु नामक ब्राह्मण कुमार से 5 प्रश्न किए। पहला, कर्म बंधनों का गंतव्य स्थान कहाँ है? दूसरा, वहां से लौटकर आने का प्रकार क्या है? तीसरा, जो इस लोक को प्राप्त नहीं होता वह कहाँ रहता है? चौथा, देवयान और पितृयान मार्ग का क्या अंतर है? और पंजवा, पांचवी आहुति में जल की पुरुष देव प्राप्ति का कारण क्या है? श्वेत केतु इतना उत्तर न दे सकने के कारण अपने पिता के पास गया और सब बात कहकर वही प्रश्न किए। पिता ने कहा कि मैं स्वयं इनका उत्तर नहीं जानता और वह अपने पुत्र सहित राजा के पास गया। राजा ने ब्राह्मण की पूजा कर तान आदि से सम्मानित करना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने दान आदि स्वीकार न कर वही 5 बातें बताने का आग्रह किया। तब राजा ने उत्तर दिया कि जगत में स्वर्ग, मेघ, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री यह 5 अग्नियां हैं। शारदा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीरज इन 5 अग्नियों की आहुति है। इसके बाद राजा परवाहन ने प्रथम 5वें प्रश्न का ही समाधान किया और स्वर्ग लोक रूप अग्नि में शारदा की प्रथम आहुति से राजा सोम की उत्पत्ति हुई। फिर मेघ रूप अग्नि में सोम को हवन करने से वर्षा की उत्पत्ति बताई। इसके बाद पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा का हवन होने से अन्न की उत्पत्ति कही गई। चौथी आहुति पुरुष रूप अग्नि में वर्षा का हवन होने से अन्न की उत्पत्ति कही गई। चौथी आहुति पुरुष रूप स्त्री रूप। पांचवी चौथी आहुति पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करने से वीर्य का उत्पन्न होना कहा गया और स्त्री रूप 5वीं अग्नि में वीर्य का हवन करने से गर्भ की उत्पत्ति बताकर इस प्रकार 5वीं आहुति में वीर रूप जल का पुरुष संज्ञक होना कहा गया है। जहां इन पूतों के साथ जीव का गमन कहा गया है, वहां नवीन देह धारण के लिए प्राथम जल ही स्त्री गर्भ में प्रविष्ट होकर पुरुषाकार देह की प्राप्ति कराता है। तीनों तत्वों के सम्मिश्रण के पश्चात जगत के नाम रूप का प्रकट करना श्रुतियों ने कहा है। वीरज में सभी भौतिक तत्व रहने पर भी जल का अंश अधिक रहता है, इसलिए जल के द्वारा ही पुरुष की उत्पत्ति कह दी गई है। यथार्थ में शरीर के जीव भूत सभी तत्वों का ग्रहण उससे हो जाता है। श्रुति में प्राण को भी जल कहा है और शरीर बदलते समय जीव का प्राण नष्ट हो कर जाना कहा है। इससे भी जल का पुरुष रूप से परिवर्तित होना कथन करना अनुचित नहीं है। प्राण की गति से ही जीव की गति संभव है। प्राण के नाम करने से जीव की मृत्यु नहीं होती। जीव जब उत्क्रमण करता है तो मुख प्राण भी उसके साथ चलता है, उस प्राण के साथ सभी इंद्रियां चल देती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा प्राण आदि सूक्ष्म भूतों से परिवेष्टित होकर ही दूसरे देह की प्राप्ति के लिए जाता है। एक शंका है कि सभी तत्वों का विलीनीकरण अपने अपने कारण में हो जाता है, क्योंकि बृहदारण्यक में वाणी अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन हो जाते हैं, चक्षु अदित्य में लीन, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दशाओं में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, लोम औषधियां में, केश वनस्पति में और रक्त वीर जल में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन मिलता है, परंतु वह जय कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति गौण है। लोम का औषधि में और केश का वनस्पति में विलीन होना प्रत्यक्ष ही मिथ्या है। इसलिए वाणी आदि की निवृत्ति ही इसका तात्पर्य हो सकता है। यदि कहो कि उस आख्याय का भूमिका में श्रद्धा की भूति दी गई है, इसलिए पुरुष संज्ञक जाल नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब का कारण श्रद्धा हो ही हुई। परंतु यह शंका व्यर्थ है, क्योंकि वहां श्रद्धा से सभी सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण हो जाता है और पांचवी भूति में उसी को जाल नाम से कथन किया है। जीव की गति को अंतम संकल्प के अनुसार और प्राण के द्वारा होने वाली कहा गया है। इस प्रकार संकल्प अनुसार सो सूक्ष्म तत्व प्राण में रहते हैं, उन्हें ही वहां श्रद्धा कहा गया है। इस प्रकार पूर्व और अपर प्रसंग में कोई विरोध सिद्ध नहीं होता। यदि ये शंका करे कि जीवात्मा इन तत्वों को साथ लेकर देह त्यागने के पश्चात जाता है, ऐसा उस प्रकरण में नहीं कहा गया है, तो ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि उसी प्रकरण में उत्तम कर्म वालों को उत्तम योनि और निम्न कर्म वालों को अधम योनि प्राप्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार समस्त भूतों से जीवात्मा अपने अपने कर्म अनुसार एक देह से दूसरे देह में जाना सिद्ध होता है। बेशुभ कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मज्ञानी न होने से देवताओं के अपमान कहे गए हैं, परंतु देवता खाते पीते नहीं है। वे तो अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते बताए गए हैं। इससे उस श्रुति का गौण भाव स्पष्ट है, उन्हें देवताओं का भोजन न मान कर सेवक समझना चाहिए। बृहदारण श्रुति, मैं ब्रह्म को न जानते हुए अन्य देवताओं की उपासना करने वाले को घर के पशुओं के समान देवताओं का पशु होना कहा है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म बंधनों को देवताओं का अन्न कहने वाली श्रुति गौण है। जीव अपने पूर्ण कर्मों से स्वर्ग लोक में जाता है, जिसकी फल प्राप्ति के निमित्त उसे वहां भेजा गया है। उन कर्मों के क्षीण हो जाने पर अनुशय अर्थात परलिपत वाचन आदि के सहित उसी मार्ग से अथवा किसी और मार्ग से संसार में लौट जाता है। उसी परलिप्त वासना के भेद से ही इस जगत में उसे विभिन्न योनियां प्राप्त होती है। अच्छी वासना होने से शुभ योनि और अशुभ वासना से निकृष्ट योनि मिलना सुनना चाहिए। श्रेष्ठ चरण वाले श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होते हैं। यदि ये कहा जाए कि उपश्रुति में जो चरण शब्द है वह कर्म संस्कार के निमित्त प्रयोग में नहीं आता, इसलिए जीव का अनुशय सहित पुनरागमन सिद्ध नहीं होता, परंतु कर्षणाजनी नाम का चार्ज कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चरण शब्द अनुशय का उपलक्षण ही है। आचार को ही चरण कहा गया है और कर्म के शेष का अनुशय कहते हैं। इसे चरण और अनुशय एक ही अर्थ का बोध कराने वाले ऐसा मानना चाहिए। यदि ऐसा कहोगे जहाँ अकारण ही चरण शब्द का प्रयोग कर अनुशय का उपलक्षण ही चरण शब्द का प्रयोग कर उसे अनुशय का उपलक्षण रूप मान लिया है, तो यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि शुभ अथवा अशुभ आचरण के द्वारा ही कर्म संस्कार रूप अनुशय की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म में आचरण अपेक्षणीय है। आचार्य बदरायण के मत में चरण शब्द जहां स्वकृत और दोषकृत दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, और रमणीय चरण का अर्थ पूर्ण आचरण अथवा पूर्ण कर्म समझना चाहिए, और कपुआचरण का अर्थ निंदनीय आचरण। आचरण और कर्म में कोई भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। कोशीत के उपनिषद में ये जो लोक में जाते हैं, वे सभी चंदन लोक में पहुंचते हैं। इसमें किसी अच्छे लोक में जाते हैं, इसलिए कि अच्छे बुरे का भेद ना कहकर सबका ही चंदन लोक गमन कहा है। इस प्रकार तो शुभ कर्म करने वालों का पुण्य मार्ग से चंद्र लोक गमन कहने वाली श्रुति से विरोध होता है। इस संदेह का निवारण नीचे के सूत्र में करते हैं। कठोपनिषद में जमराज कहते हैं, निरंतर प्रमादी और ऐशवर्ज अवमानी मूर्ख को परलोक दिखाई नहीं देता, वह प्रत्यक्ष लोक को ही सत और अनलोक को सत मानता हुआ बारंबार मेरे वश में आ जाता है। इस प्रकार पाप कर्मियों का चंद्र लोक गमन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चंद्र लोक में बुरे कर्मियों के फल को भी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। जो पाप कर्मी अपने कर्म का फल यम लोक में भोग लेते हैं, वही वहां से निकल पाते हैं। जो ऐसा कर्म करता है उसकी वैसी ही गति देखी जाती है। सिमृतियां भी पापियों के लिए फल भोग की व्यवस्था जम सदन में ही कहती है। तत्र तत्र पतम श्रांतो मूर्छता पुनरुपस्थिता। मृत्यु के बाद पापी लोग जम मार्ग में बार बार पतित होते मूर्छित होते और उठते हैं, फिर उठकर तेजी से जम के पास जाकर गिर जाते हैं। ऐसे सिद्ध हुआ कि पापी चंद्र लोक में नहीं जाते। सात प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जैसे रौरव मोहन बन्नी वैकरणी कुंभी पाक, ये पांच अनित नरक कहे गए हैं। और तामिश्र अंध तामिश्र या दो नित नरक हैं। कर्मशा एक से दूसरा नरक अधिक जातना वाला होता है। पाप कर्मियों को फल भोगने के लिए इन सात नरकों को कहा गया है। उन सभी नरकों में जमराज का शासन है और उनके अधिकारी जमराज के आदेश अनुसार ही यातना देने आदि कार्य करते हैं। जैसे जमराज के द्वारा पाप कर्मियों के दंड भोगने की बात कहना अनुचित नहीं है। संदोग में विद्या और शुभ कर्मों का कर्म के प्रसंग से ही देवान और पितृयान मार्ग का कथन है। विद्या से देवान और कर्म से पितृयान की सिद्धि होती है। कौशिकी में भी ज्ञान और सत्कर्म के फल कहने वाले प्रकरण में ही इसका वर्णन हुआ है। इससे स्पष्ट है कि श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य ही चंद्र लोक गमन के लिए अधिकारी हैं। विद्या कर्म वाले पुरुषों के अतिरिक्त तीसरी प्रकार के जीव अर्थात दुष्कर्म करने वालों के लिए किसी गति का बदान नहीं कहा। संदोग में कहा है कि जो प्राणी देवयान और पितृयान दोनों मार्गों से श्रेष्ठ है, वे सब तीन प्रकार के शुद्र जीव बार बार मरते और उत्पन्न होते हैं। वे तृतीय स्थान वाले जीव स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसे सिद्ध होता है कि पापियों के लिए चंद्र लोक में जाना संभव नहीं है। पापियों के लिए यम की दंड व्यवस्था लोक में कही जाती है और स्मृतियों में इसका वर्णन है। तीसरी गति से भी आदम एक और गति है जिससे जीवन पापकर्मी नीचे के लोकों को प्राप्त होते हैं, इसी से अधोगति कहा गया है। श्रुतियों ने भी जीव की अधम गति का वर्णन किया है। ईशावास उपनिषद के अनुसार असुरों के जो लोग हैं वे सब अज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति मरकर बारंबार उन लोगों में जाते हैं, इससे अधोगति की बात सिद्ध होती है। के बीज तीन प्रकार के होते हैं, अंडज जेरज उत्पज। इसके अतिरिक्त संशोकस पेद और कहा है, संशोकस को स्वेदज भी कहते हैं, पसीने से उत्पन्न होने के कारण इसे स्वेदज कहा गया है। उत्पज और स्वेदज दोनों पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार दोनों में समानता है। उत्पज को सथावर और स्वेदज को जंगम कहा जाता है। आकाश वायु आदि वन का लौटने का कथन अनुपयुक्त है। आकाश आदि तत्व पहले से ही विद्यमान है और जीवात्मा के पाप परिवर्तन होने पर भी वे जीवों के त्यों बने रहते हैं, इससे इस कथन की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि वे आकाश आदि के समान आकार वाले होकर लौटते हैं, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के रूप में हो जाना संभव नहीं। ऊपर के लोकों में जाने वाले जीवात्मा के लिए कर्म फल के अनुसार ऊपर पहुंचने में अधिक समय लग सकता है, परंतु वहां फल को पूर्ण हो जाने पर नीचे उतरने में कुछ देर नहीं लगती। दूसरे ऊपर जाने में गति का अवरोध रहने से देर हो सकती है, परंतु नीचे आने में गति की विशेषता से देर नहीं होती। जैसे पूर्व सूत्र में कहा गया कि जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, वैसे ही धान जौ आदि के संबंध में समझना चाहिए। यदि पैर वह कहें कि धान आदि के दाने में जीव रहने से उसका कूटना पकाना खाना आदि कर्म अशुद्ध होंगे और उससे पाप होगा, तो ऐसा कहना निरर्थक है, क्योंकि श्रुतियों में अन्न के पक्षण करने का निर्देश किया हुआ है, इसलिए अन्न पक्षण में हिंसा नहीं होती। जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के उदर में जाकर वीर्य में प्रवेश करता है, इससे सिद्ध है कि जीव का आकाश का अन्न के रूप में कथन संदेश मात्र ही है। जीवात्मा माता की योनि में प्रविष्ट होकर शरीर को प्राप्त करता है, यहीं से वह अपने कर्म फल को प्राप्त करता है और मातृ योनि में आने से पहले उसका कोई शरीर नहीं माना जाता।